أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کل کے سیشن میں ہم نے قرآن اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کی، اور بزرگان کے کلام سے آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں نقل کی. آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے قصے میں رسمی طور پر وارد ہوں، ہم ایک کام یہ کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ایک اوور ویو، ایک کلی نگاہ پیدا کریں گے، رکھیں گے اس کو قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں، تاکہ اس کلی نگاہ سے ہم آئیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں وارد ہوں. اگر وہ کلی نگاہ آ جائے ہمارے ذہنوں میں اور اس دید سے ہم دیکھیں، تو بہت سارے شاید مسائل ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اب یہاں پر اس کلی نگاہ کے لیے ہم دو یا تین نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلا نکتہ یہ کہ دیکھیں ہمارا دین کیا ہے. کامل دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کا دین اسلام ہے. اور دوسری طرف سے الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا یہ دین کامل کر دیا ہے. اور اس دین کا جو پرچم دار ہے وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد ائمہ ہدا علیہم السلام، یعنی معصومین علیہ السلام. اب معصومین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے، 14 معصومین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے، جو قرآن مجید نے جو راستہ ہمارے لیے طے کیا ہے کہ آپ اگر اس راستے پہ چلیں گے تو اس راستے کے ذریعے آپ معصومین کی حقیقت تک، یا یوں کہوں کہ کچھ حد تک اس حقیقت کے نزدیک آپ ہو سکتے ہیں، اور معصومین کی شخصیات کو اور ان کی ہستی کو سمجھ سکتے ہیں. معصومین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے جو راستہ قرآن مجید نے اور خداوند متعال نے ہمارے لیے ترسیم کیا ہے، اس کو روڈ میپ کے طور پر بیان کیا ہے، وہ ہے انبیاء علیہ السلام. یعنی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہم معصومین تک پہنچیں گے. ایک ایک نبی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، یا کم از کم جو 25 انبیاء نمونے کے طور پر قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ہے، اگر ہم ان کی زندگیوں کو، ان کے قصص کو ہم مطالعہ کریں، ان کے قصوں کو، تو اس ذریعے ہم معصومین علیہ السلام تک پہنچ سکتے ہیں. کیوں؟ آپ سوال کریں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء الہی کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی، اب آپ دیکھیں یہ میں ٹرمینالوجی استعمال کرنے والا ہوں آپ کے سامنے، پریشان مت ہوں آپ اس اصطلاح سے. وہ ٹرمینالوجی یہ کہ انبیاء الہی حقائق وجودی. دیکھیں میں نے شاید کچھ پچھلے سیشنز میں یا دوسرے جو ٹاپک میں آپ کے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ یہ کائنات اس کا ایک کلی عنوان ہے. یعنی اگر آپ کے سامنے عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، معاد ہے، عالم قیامت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، اور بہت سارے عوالم اور یونیورسز موجود ہیں. ان تمام کو اگر ہمیں کلی عنوان دیں، کلی ٹاپک دیں، اس کو ہم کہیں گے وجود، یعنی ہونا. انبیاء علیہ السلام حقائق وجودی ہیں، یعنی وجود کے مختلف حقیقت کے، یعنی اس وجود کے مختلف پیسز ہیں. यानी अब मैं ये जो यानी यानी कह रहा हूं, मेरी कोशिश ये है कि आपको मुख्तलिफ इबारात और जुमलात के जरिए इस बात को मैं समझा सकूं। मैं सही है, तो आप भी तहम्मुल करें, बर्दाश्त करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूं समझा सकूं। और खुदा से तौफीक मांगते हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मदद मांगते हैं कि वो हमें इस मौजू को समझने की जो है वो हमारे लिए दुआ फरमाए इंशाअल्लाह। देखें, मैं खुलासतन एक कलाम में आपको बता दूं, वो ये कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम एक हकीकत कामिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब ये सिंपल हो गया इंशाल्लाह। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम एक हकीकत कामिल है, एक हकीकत कामिल। ये अंबिया अलैहिस्सलाम उस हकीकत कामिल की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस हकीकत कामिल का जुज 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 है, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ठीक है। वो हकीकत कामिल क्या है? वो हकीकत कामिल वजूद नबी खत्मी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, ठीक। नबी अकरम वो हकीकत कामिल है, इंसान कामिल है। नबी अकरम वो वजूद है जिसको खुदावंद मुताल ने पहली मखलूक के उन्वान से खल्क फरमाया, पहला नूर और पहली मखलूक जो खुदावंद मुताल ने क्रिएट की वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। और उसके बाद तमाम कायनात, पूरी कायनात, ये जहान हस्ती, ये निजाम हस्ती खल्क हुआ है। अंबिया अलैहिस्सलाम इस वजूद कामिल की तरफ इशारा करते हैं, यानी नबी अकरम के अंदर जितनी भी सिफात हैं, जितनी भी क्वालिटीज हैं, वो कामिल हद तक पहुंची हुई है। सही है। अब अंबिया अलैहिस्सलाम में मिसाल के तौर पर आप मिसाल ले लें हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम आए हैं कुरान मजीद में, इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये तमाम अंबिया जिस जमाने में मबऊस हुए, मसलन हजरत इब्राहिम के जमाने में मबऊस हुए, एक खास जमाना था, उसकी खास शराइत और कंडीशंस थी, एक हुकूमत थी, वहां पर बुत परस्त मौजूद थे, एक खास जमाना था, एक खास मकान था, एक खास लोकेशन था जहां पर उनको भेजा गया। अब इन तमाम शराइत को आप मद्देनजर रखें और हजरत इब्राहिम को आप मद्देनजर रखें, तो हजरत इब्राहिम ने इस सिचुएशन के मुताबिक मुख्तलिफ सिफात को जाहिर किया, जो देखें वो भी इंसान कामिल है, ये तमाम अंबिया इंसान कामिल है, ठीक है। लेकिन इस इंसान कामिल की तमाम सिफात हर जमाने में बुरुए कार नहीं ला पाई। सही है। मसलन आप देखें, अइमा अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं, मशहूर है इमाम अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत, अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जितनी जितनी जंगें लड़ी हैं, यानी उनको जितना मौका मिला जंगों में हिस्सा लेने का, उतना किसी और इमाम को मौका नहीं मिला। तो क्या इसका मतलब इमाम तकी अलैहिस्सलाम शुजा नहीं है जिस तरह अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शुजा है? नहीं, वो भी शुजा है, ये भी शुजा है, लेकिन इमाम तकी अलैहिस्सलाम को, इमाम नकी अलैहिस्सलाम को, इमाम सादिक व इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को और दीगर कुछ अइमा अलैहिस्सलाम को मौका नहीं मिला कि वो अपनी शुजाअत का उस तरह इजहार करें जिस तरह अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मौका मिला। लेकिन वही शुजाअत की क्वालिटी और वो मर्तबा जो अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अंदर है, वही लेवल ऑफ शुजाअत तमाम अहिमा के अंदर मौजूद है। क्यों? आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, हदीस में है कि कुल्लुहुम नूरन वाहिद, तमाम अहिमा एक नूर है, तमाम मासूमीन एक मखलूक है, एक हकीकत है, वाहिदा है। सही है। अंबिया अलैहिस्सलाम भी इसी तरह है। सही है। अगर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस जमाने में, खास जमाने में मबऊस किया गया, भेजा गया, तो वहां पर वो सारी सिफात को जाहिर नहीं कर पाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सारी सिफात को जाहिर नहीं कर पाए, अगरचे वो सिफात मौजूद थी उनके अंदर। लेकिन लेवल्स के मुताबिक, अब यहाँ पर लेवल्स की बहस बहुत मुहिम है, हम इसको इग्नोर करते हैं। जब भी हम दीन का मुताला करते हैं, किसी मजलिस को सुनने जाते हैं, तो ये टॉपिक और ये थॉट प्रोसेस इग्नोर किया जाता है, वो है लेवल्स का होना। अब मैंने आपके सामने क्या कहा कि अम्बिया अलैहिस्सलाम भी इंसान कामिल है, नबी खत्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान कामिल है। खूब, यहां पर तजाद नहीं है, आपको तजाद नजर नहीं आना यहां पर कि ये इंसान कामिल है, ये सारे अंबिया इंसान कामिल है, वो भी इंसान कामिल है, और ये सारे इंसान कामिल उस इंसान कामिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये क्या बात है? बात सारी ये है कि इंसान कामिल के भी मरातिब हैं, इंसान कामिल के भी लेवल्स हैं। सही क्यों? क्योंकि हर अंबिया, हर नबी, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को आप दो एतबार से देखें, इनकी दो जहतें, दो पहलू हैं। हर नबी के दो पहलू हैं, हर इमाम के दो पहलू हैं। वो क्या पहलू हैं? एक उनका जमीनी पहलू, यानी इस दुनिया में उनको जब भेजा गया है, भेजा जाता है, और मखलूकात और दीगर आम इंसानों के अंदर उनको भेजा जाता है, तो यहां पर उनका जमीनी पहलू जाहिर होता है। सही, इस जमीनी पहलू के अंदर तमाम ये शख्सियात और हस्तियां इंसान कामिल है। एक उनका मलकूती पहलू है, ये जमीनी पहलू था, और एक उनका मलकूती पहलू है। मलकूती पहलू के अंदर भी इंसान कामिल है, लेकिन 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 इस मलकूती पहलू के अंदर जो इंसान कामिल है, यहां पर इंसान कामिल के लेवल्स हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको यकीनी मत लें, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मिसाल अर्ज करना चाह रहा हूं। मसलन एक नबी इंसान कामिल है लेवल नंबर 5 पर, इंसान कामिल है लेकिन लेवल नंबर 5, और एक नबी लेवल नंबर 7 पर इंसान कामिल है। सही है, लेकिन जब मखलूकात के अंदर आते हैं, आम इंसानों के अंदर भेजे जाते हैं, माशरों के अंदर, सोसाइटीज के अंदर, तो हमें एक यकसान तौर पर इंसान कामिल नजर आते हैं। हमें वो मरातब नजर नहीं आते, उनके लेवल्स मुख्तलिफ नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारी फहम, हमारा थॉट महदूद है, लिमिटेड है। उस लिमिटेड होने की वजह से हम सबको एक लेवल पर देखते हैं, लेकिन उस फना के अंदर, खुदा के फना होने के मरातब में, इंसान के कामिल होने के मरातब में मुख्तलिफ लेवल्स पर हैं। सही है, इसके ऊपर बाद में दोबारा दिक्कत करें, कोई इतनी पेचीदा बात नहीं है। तमाम उलमा ने, मुफस्सरीन ने इसके ऊपर बात की है। सही है, मुमकिन है ये बात आपके लिए नहीं हो, क्योंकि शायद ये बातें जो इन सेशंस में आ रही, मुमकिन है शायद पेश ना की जाती हूँ, लेकिन बिलाखिर ये कुरान के अंदर मौजूद है, अहादीस के अंदर मौजूद है, तालीमात उलमा व फुकहा व हुकमा के अंदर ये मौजूद है। सही, ये अकायद की किताबों भी में भी जो तखस्सुसी किताबें हैं, स्पेशलाइज्ड किताबें हैं, उनके अंदर ये बातें मौजूद हैं। खूब, बस एक निगाह ये हमें पैदा करनी है अपने अंदर, ताकि इस निगाह से हम आए उस किस्से में। बस अगर हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में वारिद हो रहे हैं, किस उनवान से? इंसान शनासी के उनवान से, इंसान कबल दुनिया, इंसान दुनिया से पहले। सही, तो ये किस हदफ के लिए? हम चाहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मासूमीन अलैहिस्सलाम को समझ सकें, उनके हकायक को समझ सकें, उनकी हस्ती को समझ सकें। तो उस एतबार से हमें कससुल अंबिया की तरफ रुजू करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। और क्या बेहतर, कितना अच्छा है कि खुद खुदावंद मुताल ने इस कससुल अंबिया को अपने कलाम में, अपनी किताब में दर्ज किया है, नाजिल किया है। तो इससे बेहतर और रास्ता क्या हो सकता है? हमें किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं है, अंबिया के दर पर हम आए, जिसके हवाले से अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि खुदावंद मुताल ने, अगरचे ये वाला नुक्ता नुक्ता जो मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, मैं इस नुक्ते को कल के सेशन में کچھ الیبریشن میں نے کی ہے، لیکن دوبارہ تکرار ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس اعتبار سے دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے 2200 سے زیادہ آیات اسی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، تاکہ اس راستے سے، اس قصے سے، اس قصص کے مطالعے سے ہم جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اور اہل البیت علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے. یہ پہلا پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کہ اب آپ دیکھیں ہسٹری کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ کہ علماء جس کے اوپر تاکید کرتے ہیں، اور یہ پوائنٹ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک دو قول موجود ہیں. ایک یہ کہ یہ دورانیہ یا تو 7000 سال کا دور ہے، ٹائم پیریڈ ہے تمام انبیاء کا، یا 10000 سالہ. نارملی 10000 سالہ دورہ جو ہے وہ زیادہ پیش کیا جاتا ہے. یعنی یہ 10000 سال کا جو دوران ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم کی بعثت تک، یہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ ایک وجود ہے، یہ ایک بینگ ہے. صحیح ہے، دس از اونلی ون بینگ، دس از اونلی ون وجود، ایک حقیقت ہے، ایک چین آف ایونٹس ہے. اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. نہیں، یہ تمام انبیاء اور ان کے قصے ایک چین آف ایونٹ کا نام ہے، ایک چین آف ایونٹ کا نام ہے، اور تمام کے تمام ایونٹس کو خدا کے نقشے کے تحت پلان کیا گیا ہے. اب آپ کہیں گے اس میں اختیار کہاں ہے؟ آیا انسان فورسفلی ان ایونٹس کا شکار ہو جاتا ہے؟ نہیں، اختیار کی جگہ اپنی جگہ محفوظ ہے. آپ یہ مت کہیں کہ چونکہ خدا کا نقشہ ہے اور خدا نے پلان کیا ہے، اور چونکہ خدا از دا بیسٹ آف دا پلانرز، اور خدا نے ان قصوں کو ڈائریکشن دیے، تو یہاں پر انسان جو ہے وہ معمولی انسان، اس سے اختیار چھن جاتا ہے. نہیں، اختیار کی بحث، اختیار کا ٹاپک جو ہے وہ اپنی جگہ محفوظ ہے. اختیار بھی ہے انسان کے اندر، وہ بھی سیف ہے، اور یہ بات بھی سیف ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اب ہم اس بحث میں نہیں جا سکتے کہ کیسے اختیار یہاں پر محفوظ ہے. خوب، اب یہ پوائنٹ. اچھا، 10000 سال کا یہ دوران، یہ ایک حقیقت ہے. اب آپ یہ عدد ذہن میں رکھیں، یہ کوانٹیٹی، یہ نمبرز 10,000. اس کے بعد کون سی کوانٹیٹی آتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر جتنے بھی امام ائمہ علیہ السلام، امام عسکری علیہ، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک، اور غیبت صغرا سے پہلے تک، یہ 250 سال کا ایک دور کہا جاتا ہے. ایک جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 250 ایئرس کا ہے. اس کے بعد غیبت صغرا کا دور ہے، وہ ہے 70 سال کا دور. علماء فرماتے ہیں کہ یہ 10000 250 70 یہ اتفاقی عدد نہیں ہے، اتفاقی نمبرز نہیں ہے، ان سب کے پیچھے خدا کا نقشہ موجود ہے. اور اب تک، یعنی ابھی ہم 2020 میں ہیں اور اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، صحیح ہے، اور 1441 ہجری قمری کا سال ہے اسلامی اعتبار سے، ابھی تک جتنی بھی چین آف ایونٹس آئے ہیں، صحیح ہے، یہ سب خدا کے نقشے کے تحت ہے، صحیح ہے. اور انسانوں کا رول یہاں پر جو پلے ہوتا ہے آزمائش اور امتحانات کے اعتبار سے، یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے. حتیٰ یہ کورونا وائرس بھی، میں نے کسی کو کل کہا تھا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے دو نگاہیں موجود ہیں، ایک مٹیریلسٹک نگاہ، اس مادی اعتبار سے کورونا وائرس کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیفیکلٹی ہے، مشکل ہے، اور بعض لوگوں نے اور بعض کنٹریز نے اس کو جو ہے وہ پھیلایا ہے، اور یہ ساری باتیں، یہ اپنی جگہ محفوظ ہیں، یہ بات ٹھیک ہوگی، صحیح ہے. لیکن ایک اور نگاہ بھی ہے، وہ یہ کہ ایک الہی نگاہ ہے، خدائی نگاہ ہے. कि इस कोरोना वायरस की वजह से खुदा ये चाहता है कि पूरी दुनिया जो है वो इलाही बन जाए, पूरी दुनिया एक कदम आगे आ जाए उस मानवीयत की तरफ। सही है, इसी वजह से आप देखें बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी कोरोना वायरस के बाद कि वेस्टर्न स्कूल्स के अंदर अमेरिका में, यूरोप में, वो लोग और वो स्टूडेंट्स जो दुआएं नहीं करते थे कोरोना वायरस की वजह से, उनकी स्कूल्स में डेली बेसिस पे 15 मिनट का टाइम पीरियड रखा जाता था, ठीक है, ताकि उस 15 मिनट के अंदर प्रेयर करें, दुआ करें खुदा से। सही है, तो आप देखें ये स्पिरिचुअल तब्दीली, ये कोई मजाक नहीं है, कोई इत्तेफाकी नहीं है, कोई इंसिडेंस नहीं है यहाँ पर। सही है, तो ये निगाह हम महफूज रखें, जहां पर हम मादी निगाह को देखते हैं, मादी निगाह से और मादी ऐनक से हर चीज को देखते हैं, तमाम इवेंट्स को देखते हैं, वहां पर हम इलाही निगाह भी रखें। वहां पर हर आजमाइश, हर इम्तिहान, हर मुश्किल इंसान की जिंदगी के अंदर, हर सख्ती इंसान को एक दर्जा, एक लेवल ऊपर लाने के लिए स्पिरिचुअल एतबार से। और आप देखें इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये असातीद ने, हमारे एक उस्ताद ने ये बात कही थी कि इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना वायरस की वजह से खुदा के करीब हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस की वजह से खुदा से दूर हो चुके हैं। ऐसा ना हो कि हम इस कैटेगरी में आ जाए, सेकंड वाली कैटेगरी में, कि हम खुदा से दूर हो जाए, खुदा ना खास्ता। सही है, तो हमें इवेंट्स को देखने के एतबार से बिलाखिर मुख्तलिफ निगाह रखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम भी वही सोच रहे हो जिस तरह नॉन मुस्लिम सोचते हैं। नहीं, उनकी निगाह और है, हमारी निगाह और है। बस तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम नबी अकरम के वजूद का एक 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 हिस्सा है। आप पजल की पीसेस की भी मिसाल ले सकते हैं, जब पजल की मुख्तलिफ पीसेस को जोड़ा जाता है तो एक हकीकत कामिल हमें नजर आती है। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम और नबी अकरम मासूमीन अलैहिस्सलाम का किस्सा कुछ यूं है। अब सेकंड पॉइंट, अब ये पहला पॉइंट हो गया, वो दीद इंशाल्लाह, वो ओवरव्यू इंशाल्लाह, वो कुली निगाह पैदा हो गई होगी अंबिया के एतबार से। सही है, अब एक और पॉइंट यहां पर, सेकंड पॉइंट इस सेशन का ये है कि कुरान के अंदर, कुरान का क्या तरीकेकार है, खुदावंद मुताल का क्या तरीकेकार है इंसान को तालीम देने का, किस तरह खुदा इंसानों के मुख्तलिफ कैटेगरीज ऑफ पीपल को एजुकेट करता है, हमें इस एतबार से ये बात देखनी है। वो ये है, अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं, मैं दो अभी टर्मिनोलॉजीज और इस्तेमाल करूंगा, सही है, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह इसको मैं समझाऊंगा, पहले इनको मैं इस्तेमाल करूं, फिर इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेके आऊंगा, उस एग्जाम्पल और उस मिसाल से आप आसानी से समझ जाएंगे। अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान की तालीमात का तरीकेकार ये है कि मफाहीम को मसादीक के साथ तौजीह देना, मफाहीम मफहूम, मसादीक मिसदाक, यानी खुदावंद मुताल मफहूम, एक मफहूम को मिसदाक के जरिए तौजीह देता है। क्या, एक इंग्लिश मिसाल मैं आपको देता हूं, आप मोबाइल फोन की मिसाल ले लें। सही है, सही है, आपके सामने आप जाते हैं किसी शॉप में मोबाइल खरीदने के लिए, आपने सुना है कि फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का ये लेटेस्ट स्मार्टफोन आया है, आप जाते हैं खरीदने के लिए, आप जाते हैं शॉप में, वहां पर सेल्समैन होता है, सेल्समैन आपको यूं तौजीह देता है, देखें इस तरह से कि स्मार्टफोन, विभाषी, स्मार्टफोन्स टिपिकली कंटेन अ नंबर ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स include various sensors that can be leveraged by the softwares such as magnetometer, proximity sensors, barometer, gyroscope or accelerometer. अब आप मुझे बताएं, आप इस मोबाइल को खरीदेंगे? नहीं, कोई भी इस मोबाइल को नहीं खरीदेगा। वो क्या कहेगा कि भाई मुझे तो मोबाइल बताओ, क्या इसके पिक्सेल्स कितनी है, कितना कितने मेगापिक्सेल्स का इसका कैमरा है, इसकी हार्ड ड्राइव कितनी है, सही है, और इसकी रैम कितनी है, सही है, तो और इसका टच इसकी टच क्वालिटी कैसी है, इसकी बैटरी चार्जिंग आवर्स कितनी है। सही, आप ये पूछेंगे ना, आप तो ये नहीं पूछेंगे किसका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कैसा है, किस क्वालिटी का है। कोई भी ये नहीं पूछता है, कोई भी आम इंसान कंज्यूमर कभी भी ये नहीं पूछेगा। सही है, तो ये क्या बात हो गई। वो जो इबारत उसने इस्तेमाल की थी कि ये मेटल ऑक्साइड ब्ला 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 है, इसको कहते हैं मफहूम। आप यूं समझे थ्योरी, थियोरेटिकल बहस। सही है, जिसमें दलील की बात की जाती है, दलीलों को इस बात किया जाता है, एक बहस को जो, एक बात को जो है वो, एक टॉपिक को साबित करने के लिए 10 दलीलें पेश की जाती हैं, उसमें इल्मी और मुश्किल इस्तिलाहात एंड टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं। सही है, लेकिन जब आप खुद मोबाइल को देखते हैं, वाह सैमसंग इतना बड़ा मोबाइल, बेहतरीन। सही है, आजकल तो फोल्डेड मोबाइल भी आ गए हैं। ये क्या हो जाएगा, ये मोबाइल जो आपके सामने है, जो आपको नजर आ रहा है, ये हो जाएगा मिसडाक, यानी उस थ्योरी का ऐनी नमूना, एक सामने नजर आने वाला एग्जाम्पल। सही है, खुदावंद मुताल ने, अल्लामा तबातबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुदावंद मुताल ने इंसानों को तालीम देने के लिए पूरे कुरान में यही कायदा अपनाया है कि मफहूम को मिसदाक के जरिए तौजीह देता है, आपको नजर आए कुरान के अंदर वो एग्जाम्पल्स जो मुझे फॉलो करने हैं, जो इंसानों को फॉलो करने हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम वो एग्जाम्पल्स हैं। खुदावंद मुताल ने असलन ये बात नहीं की, ये तरीकाकार नहीं अपनाया है कुरान के अंदर कि अंबिया अलैहिस्सलाम का वजूद पहले साबित किया जाए और लोगों के सामने 10 आयतें लाई जाए ताकि उसमें दलीलें हों, ताकि अंबिया का वजूद साबित हो। नहीं, असलन ये बात नहीं है, असलन ये तरीकेकार नहीं है कुरान मजीद का। कुरान मजीद का तरीकेकार जो खुदावंद ने अपनाया है इस किताब करीम और मजीद के अंदर, वो ये है कि एग्जाम्पल्स सामने आपको नजर आए कि ये है नबी, ये है वजूद नबी, इस वजूद नबी को तुम देखो, इसको फॉलो करो और इसके रास्ते पर चल पड़ो और उस इंसान कामिल के सफर तक पहुंचो और कमाल इंसानी और इलाही को अपने अंदर पैदा करो। सही है, तरीकाकार है, सिंपल एज दैट। ओके, खूब, बस क्यों ये तरीका कार आप पूछें क्यों, क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है, इल्मी किताब नहीं है। अगर इल्मी किताब होती, जिस तरह हम मदारिस में जाते हैं और वहां पर अकायद की क्लासेस होती हैं, वो इल्मी है, और जो आपको टेक्स्ट दिया जाता है वहां पर, वो इल्मी टेक्स्ट होता है, वहां पर दलीलें होती हैं और इस्तदलाल किया जाता है। सही है, ये सारी चीजें, लेकिन कुरान इल्मी किताब नहीं है, हिदायत की किताब है। चूंकि हिदायत की किताब है, तो हिदायत की किताब का तरीकेकार यही होता है कि इंसानों के सामने, रीडर के सामने, पढ़ने वाले के सामने एग्जाम्पल्स हों। सही है, मुझे नजर आए कि वो एग्जाम्पल क्या है जिसको मुझे फॉलो करना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। एक मैं नमूना आपको बताता हूं कि कुरान किस तरह हिदायत करता है। मसलन हजरत मूसा अला नबीना व आलिही व अलैहि सलाम के किस्से में आप देखेंगे, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने एक शख्स का उन्होंने कत्ल किया, ठीक है, और फिरौन की हुकूमत से वो फरार होने के लिए निकले, ठीक है, और पहुंचते हैं हजरत शुएब अलैहि सलाम के पास। वहां पर हजरत शुएब अलैहि सलाम उनको कहते हैं कि आप या 8 साल या 10 साल मेरी खिदमत करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं 10 साल आपकी खिदमत करता हूँ, ठीक है। और फिर जो वो माजरा पेश आया, उनकी शादी हुई और किस तरह हुई और वो सारे हवादिस रिवायात के अंदर नकल हुए, अहादीस के अंदर। खूब, वहां पर उनको पनाह मिल गई हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास। अब ये 10 साल गुजर जाते हैं और फिर वो वापस लौट रहे होते हैं अपनी फैमिली समेत, अपने बच्चों समेत, और जितना भी माल उस, और क्या नाम है, सरमाया जो उनके साथ था, खाने पीने की चीज़ें थी, उन सब के साथ वो निकल पड़े वापस लौटने के लिए अपनी एक खास लोकेशन के लिए, लोकेशन की तरफ। अचानक रास्ते में मौसम खराब हो जाता है, बारिश होती है, बिजली होती है, और मौसम इस तरह खराब हो जाता है। नतीजे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते को गुम कर देते हैं। सही है, वो भटक जाते हैं और उनको नहीं पता अब के अब मुझे कहाँ जाना है। साथ में जो उनकी वाइफ हैं, जो उनकी हमसर हैं, वो भी हामिला होती हैं। और जितना भी नतीजे में क्या होता है, इस मौसम की वजह से सारा कुछ, खाना पीना सब कुछ खो बैठते हैं, हाथ से दे बैठते हैं, अब कुछ भी नहीं है। अब इस मौके पर इंसान को क्या चाहिए, आप मुझे बताएं। इंसान को एक रो अब देखिए, ये रात का भी टाइम था, ये इंसान को यहां पर रोशनी चाहिए, एक लाइट यहां पर चाहिए जो उसकी रहनुमाई करे। अब यहां पर आयत ये है, देखें आयत यहां पर ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज रा नारन फकाल ले अहली उमकुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिकबसिन औ अजिदु अला नारी हुदा। जब उन्होंने आग को देखा और अपने अहल से कहा कि तुम इसी मकाम पर ठहरो, मैंने आग को देखा है, शायद मैं इसमें से कोई अंगारा ले आऊं या उस मंजिल पर कोई रहनुमाई हासिल कर लूं, शायद कोई मुझे एक गाइड मिल जाए, कोई गाइडेंस देने वाला मिल जाए। सही है, जब वहां पहुंचते हैं आग के पास, तो यहां पर किस्सा एकदम बदल जाता है। वो क्या, फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखलअना अलैक इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुवा। जब मूसा आग के करीब पहुंचे, निदा आने लगी, ये मैं हूं तेरा परवरदिगार या मूसा। यहां पर खुदावंद मुताल जो है वो अपने आप को तजल्ली देते हैं, जाहिर करते हैं मूसा के सामने। अब ये कुरान मजीद के अंदर ये किस्सा आया है, लेकिन क्या बना मूसा अलैहिस्सलाम की फैमिली का, उनकी बीवी का क्या हुआ, उनके बच्चों का क्या हुआ, कुरान मजीद ने जिक्र नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब कुरान मजीद हिदायत के नुक्ते पर, हिदायत के उस पॉइंट पर पहुंचता है, तो एकदम किस्से को छोड़ देता है। यानी वो जो सेकेंडरी किस्सा था, प्राइमरी किस्सा नहीं, प्राइमरी किस्सा वो था जो मैंने आपके सामने ये आयात तिलावत की। ये जो हिस्सा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की हमसर, उनकी बीवी और उनकी फैमिली का क्या हुआ, ये सेकेंडरी पार्ट है, ये हिदायत का हिस्सा नहीं है। सही है, तो बस आप देखिए, ये खुदावंद मुताल का एक मैंने एक सैंपल तरीका आपके सामने पेश किया है। अब हम यहां से ये नतीजा लेंगे कि बहुत मुहिम नतीजा है, बहुत मुहिम नतीजा है, वो ये कि तारीख है अंबिया, द हिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिट्स। सही है, तारीख है अंबिया दर हकीकत इंसान की रूहानी स्पिरिचुअल लाइफ आपको कहां मिलेगी, तारीख है अंबिया के अंदर। अगर आप चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल हिस्ट्री को तलाश करें, तारीख है अंबिया की तरफ आप रुजू करें आप। सही है, क्यों, इसकी एक खसूसियत यही है कि तारीख अंबिया, इसी वजह से जमाने की कोई कैद यहां पर नहीं है, चूंकि तारीख अंबिया इंसान की स्पिरिचुअल और रूहानी हिस्ट्री है, तो यहां पर जमाने की कोई कैद नहीं है। ये नहीं कि मैं तो इस जमाने में हूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस जमाने में थे, हमारे जमाने में और उनके जमाने में जमीन आसमान का फर्क है, उनके जमाने की कंडीशंस और शराइत और थे, हमारे जमाने की शराइत और हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सही है, असलन ऐसा नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक चले आ रहे हैं, वन चेन ऑफ इवेंट। चूंकि वन चेन ऑफ इवेंट्स है, तो जमाने की बस कोई कैद नहीं है। सही है, हमने अपने जहन को जमानी बनाया हुआ है, टाइमली बनाया हुआ है, चूंकि हमें 5 बजे उठना होता है, सही है, फजर के लिए, हमें शाम को इफ्तारी करनी होती है, हमें 7:24 पे अलार्म रखना होता है इफ्तारी का, सही है, सुबह 4 बजे फजर का अलार्म रखना होता है, 8 बजे ऑफिस जाना होता है, तो हमारा जहन जो है वो इस जमाने के एतबार से, टाइम के एतबार से, आप यूं समझे, अजीब सी बात है, टाइम ज्यादा हो चुका है। सही है, टाइम ज्यादा हो चुका है, हम टाइम के ज्यादा पाबंद है, टाइम को ज्यादा देखते हैं, जबकि खुदा की निगाह जमानी नहीं है, बल्कि फरा जमानी है, जमाने से ऊपर है। आप आलम कयामत में जाएंगे तो वहां पर जमान नहीं है, वहां पर जमाना नहीं है आखिरत के अंदर, ये जमाना सिर्फ दुनिया के अंदर है। सही है। बस अंबिया अलैहिस्सलाम हमारा रोल मॉडल है, और एक एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी रोल मॉडल। कैसे, ये आयत देखें आप, उलाइकल्लज़ीन हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदे। खुदावंद मुतआली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया कि यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है, लिहाजा आप भी उसी हिदायत के रास्ते पर चलें। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम गुज़श्ता अंबिया के एक्सपीरियंसेस उनके पास मौजूद हैं, तमाम अंबिया की सुन्नतें उनके पास मौजूद हैं। इस एतबार से ये अंबिया को फॉलो करेंगे उनके एक्सपीरियंस किसके एतबार से, उनके तजुर्बात के एतबार से। और इसी वजह से इमाम जमाना अलैहिस्सलाम जब जुहूर करेंगे तो हदीस में है कि इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के पास तमाम अंबिया की सुन्नतें मौजूद होंगी। इमाम जमाना के पास सुन्नत ईसवी भी होगी, सुन्नत मूसवी भी होगी, सुन्नत अय्यूबी भी होगी, और दीगर तमाम अंबिया की सुन्नत यूसुफी भी होगी, और तमाम अंबिया की सुन्नतें एक जगह इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के पास मौजूद होंगी कयाम के बाद, जुहूर के बाद। तीसरा पॉइंट इस सेशन का, सेकंड लास्ट, वो ये है कि अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह, वाकियन अल्लामा तबातबाई ने तफसीरुल मीज़ान लिखी है, सही है, कुछ साल पहले, अब तो फौत हो चुके हैं। उलमा पहले ये फरमाते थे कि हमें हर 20 साल बाद एक नई तफसीरुल मीज़ान की ज़रूरत है, इस कदर वैल्यू है तफसीरुल मीज़ान की। लेकिन आज अब आप देखें इसकी वैल्यू क्या हो गई। आज उलमा ये फरमाते हैं कि हमें हर 6 महीने बाद एक नई तफसीर मीज़ान की ज़रूरत है। उस रविश है, उस मेथड ऑफ अल्लामा तबातबाई को हर 6 महीने बाद हमें उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ज़माना ऐसा आ चुका है कि नए मसाइल डेली बेसिस पे जहूर कर रहे हैं। एक आज का जो इंसान है, डेली बेसिस पे नए मसाइल उसके लिए खड़े हो रहे हैं। तो लिहाजा हमें हर 6 महीने बाद एक नई तफसीर की ज़रूरत है, वो भी अलमीज़ान की रविश के ऊपर। आप देखिए ये वैल्यू है अलमीज़ान की। अल्लामा तबातबाई अलमीज़ान की जिल्द नंबर 6 के अंदर एक बहस, एक टॉपिक लेके आते हैं, वो है अदब अंबिया। अदब अंबिया के ज़ैल में एक बहुत ही खूबसूरत बात बयान फरमाते हैं, वो ये कि अंबिया तौहीद मुजस्सम है। तौहीद मुजस्सम, तौहीद का ऐनी नमूना। यानी आपको तौहीद के लिए किसी खास क्लास में जाने की जरूरत नहीं है, आप कससुल अंबिया का मुताला करें, आप दर हकीकत तौहीद का मुताला कर रहे हैं, आप तौहीद को अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं। ये अल्लामा फरमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तमाम फजाइल और तमाम अखलाकी कमालात और क्वालिटीज अंबिया के वजूद में मौजूद हैं। अल्लामा ये फरमाते हैं, ये कोट है, कि चूंकि अंबिया इस्मत के मकाम के हामिल हैं, मासूम हैं, कोई, देखें, कोई कॉल, कोई फेल, कोई हरकत और कोई रफ्तार और बिहेवियर अंबिया का इरादा इलाही से खाली नहीं है। अंबिया वही करते हैं जो उनका रब चाहता है, जो उनका परवरदिगार चाहता है। सही है। वो सोते हैं तो खुदा के इरादे के तवस्सुत से, वो जागते हैं, जो काम करते हैं उनकी हर एक्टिविटी खुदा के इरादे से खाली नहीं है। इस वजह से, इस जहत से, इस एतबार से अंबिया तौहीद के एक ऐसे मर्तबे तक जा पहुंचे कि उनको तौहीद मुजस्सम कहा जा सकता है। ओके, अब आखिरी पॉइंट देखें, मैं आपके सामने एक और बात ये कह दूं, ये आखिरी पॉइंट के एतबार से देखें। अब हम अपने आप को मुकायसा करें अंबिया अलैहिस्सलाम से, ना वो वाला मुकायसा, ना इस्मत वाला मुकायसा, नहीं। आप देखें, पहले ये बात सुनें, फिर आप कुछ समझ जाएंगे। देखें, अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम जो दुआएं करते हैं वो हमारी यकीन की हद तक है। जितना लेवल ऑफ यकीन है हमारा, उतनी ही हमारी दुआ जो है हमारी जबानों पर आती है और उसी हद तक कबूल भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बीमार को देखें तो क्या दुआ करेंगे, खुदाया इस बीमार को शिफाए कामिल व शिफाए आजिल अता फरमा, यही दुआ करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि बीमार है और सामने नजर आ रहा है, तो ये दुआ करेंगे खुदा इसको शिफा अता फरमा। लेकिन अब अल्लामा ये फरमाते हैं, अगर हम किसी मुर्दा को देखें, एक मुर्दा लाश को देखें, इंसान की लाश को, तो क्या हम दुआ करेंगे खुदाया इस मुर्दे को जिंदा कर दे, हम ये दुआ कभी भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि खुदा इस मुर्दे को जिंदा कर सकता है। हमें यकीन, इंसाफ से बात करें, है यकीन नहीं है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको इस हद तक यकीन है। अंबिया अलैहिस्सलाम के अंदर ये यकीन है, कामिल कंप्लीट यकीन मौजूद था। इसी वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब एक मुर्दे के सामने आते थे, दुआ फरमाते थे, नियत करते थे कि खुदाया इस मुर्दे को जिंदा कर दे, बेइज्ने इलाही वो मुर्दा जिंदा हो जाता था, बेइज्ने खुदावंद। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम भी, सही है, उनकी जानिब से कोई करामत हमें नजर आती है, वो यही फरमाते कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है। सही है, ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमाते कि ये मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैंने इस मुर्दे को जिंदा किया है, नहीं, मैंने सिर्फ दुआ की है और दुआ के अंदर मैंने वो यकीन रखा है, खुदा ने उस यकीन को देखते हुए उस मुर्दे को जिंदा किया है। खुदा हमेशा ये देखता है कि खुदा के इस अब्द के अंदर, इस बंदे के अंदर यकीन कितना है, जितना यकीन ज्यादा होगा उतनी ही दुआ भी उस हद तक कबूल होगी। अगर हमें यकीन हो कि ये कोरोना वायरस और ये मुश्किलात जो हैं वो एक लम्हे के अंदर खत्म हो सकती हैं, अगर ये यकीन आ जाए तो शायद एक लम्हे के अंदर ये मसला जो है हल हो सकता है। सही है, ये मुश्किलात, इनका एक मकसद यही है कि हम अपने यकीन को इजाफा करें खुदा की जाने। सही है, तमाम जो हेल्दी और डॉक्टर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर अमल करें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने यकीन को भी हम साथ साथ बढ़ाएं इंशाअल्लाह। बातें बहुत ज़्यादा हो गई, माजरत अगर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन चूंकि टॉपिक ऐसा है और बिलाखिर एक ऐसा टॉपिक है जिसको शायद शायद बयान नहीं किया गया है उर्दू ज़बान में, अगरचे फारसी ज़बान में बयान हो चुका है उलमा की तरफ से, लेकिन उर्दू ज़बान में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको बयान नहीं किया जाता। उनमें से एक टॉपिक कससुल अम्बिया है, कससुल अम्बिया का तरबियती पहलू और खुसूसन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखते हुए इंसान शनासी, इंसान की स्पिरिचुअल हिस्ट्री। इंशाअल्लाह कल से हम ऑफिशियली वारिद हो जाएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर। आप भी तैयारी के साथ आएँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तवसुल करें, इंशाअल्लाह खुदा हमें इन मौजूआत को माह रमज़ान के सदके, इन कीमती लम्हात के ज़रिए जो है वो हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा जाल अवाकिब उमूरिना खैरा, खुदाया हमारी आकिबत बखैर फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।